एहेस्केल अध्याय 37। एहेस्केल अध्याय 37 में इसराइल राष्ट्र के पुनर्जन्म की अर्थात उनके पुनर्वास की भविष्यवाणी है। एहेस्केल अध्याय 37 पद 1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एहेस्केल को आत्मा उठाकर उस घाटी में ले जाता है जहां चारों ओर हड्डियां हैं। एहेस्केल अध्याय 37 पद 2 और 3। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में प्रभु, तू ही जानता है। मैं ना तो जानता हूं ना ही देख पाता हूं। एहेस्केल अध्याय 37 पद 4 से लेकर 10 तक। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक आहट आई और भुईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब परमेश्वर इस दर्शन की व्याख्या करता है। एहेस्केल अध्याय 37 पद 11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। वे अब एक दूसरे से दूर हो गए, जर्मनी में, यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, चीन में, यमन में, रूस में और संपूर्ण संसार में वे तितर बितर हो गए हैं। एहेस्केल अध्याय 37 पद 12 से लेकर 14 तक। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो उन्हें फिर राष्ट्रीय जीवन प्रदान करेगा। वे 19 सदियों बाद पुनर्जीवित होकर फिर से एक राष्ट्र होंगे। तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, ये इसराइल के पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी है। एहेस्केल अध्याय 37 पद 15 से लेकर 17 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख यहूदा की और उसके संगी इसराइलियों की, तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इसराइलियों को लकड़ी, फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। उसने दो लकड़ियों को लेकर उन्हें जोड़ दिया कि वे एक हो जाएं। एक पर उसे यहूदा लिखना था और दूसरी पर यूसुफ। एहेस्केल अध्याय 37 पद 18 से लेकर 22 तक। और जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें ना बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है, तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इसराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। और जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें, और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इसराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा, और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। ये अत्यधिक स्पष्ट है कि जब इसराइल पुनः बसाया जाएगा तब वे बंधुआई में जाने वाले दो राष्ट्र ना होकर एक राष्ट्र ही होंगे, उनमें फिर विभाजन ना होगा। लोग इन दोनों लकड़ियों का गलत अर्थ ना लगाएं। जिस लकड़ी पर यहूदा लिखा है वो दक्षिणी राज्य को दर्शाती है और जिस पर यूसुफ लिखा है वो उत्तरी राज्य को। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राज्य होगा, और वे फिर दो न रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। एहेस्केल अध्याय 37 पद 23 और 24। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों, वो अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। ये भविष्य की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह आकर दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और धार्मिकता की स्थापना करेगा तथा सदा के लिए न्याय करेगा। एजेकियल अध्याय 37 पद 24 से लेकर 27 तक। सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा, वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर ताना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। परमेश्वर अपनी प्रजा के मध्य वास करेगा, उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखेगा। मसीह अपने राज्य में उनके बीच रहेगा। एहेस्केल अध्याय 37 पद 28। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र करने वाला हूं। अध्याय 40 में वो उस पवित्र स्थान का वर्णन करेगा जिसका बनाया जाना आवश्यक है।